नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। डोनाल्ड ट्रंप ने आज रात वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले देश के समक्ष मौजूद हर संकट को दूर करने के लिए ऐतिहासिक गति और शक्ति से कार्य करने का वादा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति और क्वाड से संबंधित घटनाक्रम पर चर्चा की। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी। कोलकाता की सियालदह अदालत आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में संजय रोय को आज सजा सुनाई। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग में जेएसडब्ल्यू सोरमा हॉकी क्लब का सामना दिल्ली एसजी पाइपर से होगा। अब समाचार विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे होगा। समारोह से पहले 78 वर्षीय ट्रंप ने कल रात वाशिंगटन डीसी में एक विजय रैली को संबोधित किया। श्री ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने आने वाले हर संकट को दूर करने के लिए ऐतिहासिक गति से काम करने का वादा किया। श्री ट्रंप ने समर्थकों को आश्वासन दिया है कि उनके कार्यकाल की शुरुआत से समाप्ति तक अमेरिका सीमाओं पर आक्रमण बंद हो जाएगा और सभी अवैध सीमा अतिक्रमण कार्यों को भी रोक दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति और क्वाड से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से भी मुलाकात की। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो रही है। 5 दिन के इस आयोजन में समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के भारतीय मॉडल का विशेष रूप से उल्लेख होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी के साथ भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत और श्रीलंका ने दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए सामपुर सौर ऊर्जा संयंत्र से लिए प्रति यूनिट बिजली मूल्य को अंतिम रूप दे दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कल एक बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच संयुक्त उद्यम में 5.97 अमेरिकी सेंट प्रति किलोवाट की कीमत को अंतिम रूप दिया गया है। इसराइल और हमास के बीच नए युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत हमास ने बंधक बनाई गई 3 इजरायली महिलाओं को कल गाजा में रिहा कर दिया है। इन महिलाओं को 7 अक्टूबर 2023 में बंधक बनाया गया था। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी नियमावली को आज मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही प्रदेश में यूसीसी कानून लागू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड से निकलने वाली गंगोत्री जिस तरह पूरे देश को संचित करती है, उसी तरह यूसीसी पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और बच्चा गोद लेने आदि विषयों पर एक समान कानून लागू करना है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की पीजीटी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। संजय रॉय को पिछले सप्ताह शनिवार को अदालत ने इस मामले में दोषी करार दिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा है कि सीबीआई जांच से साबित होता है कि संजय रॉय इस घटना में दोषी पाया गया। पीजीटी डॉक्टर का शव पिछले वर्ष 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। बाद में उसे सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई ने इस मामले में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत ने बहुराष्ट्रीय निगमों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित कर कारोबार करने की सुगमता में सुधार किया है। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन के बाद ये बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिना किसी भेदभाव के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डाबरा ने आकाशवाणी समाचार को बताया है कि संगोष्ठी में भारत के 60 करोड़ कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत लाने की संभावनाओं पर विचार किया गया है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज से पटना में शुरू हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दो दिन के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा है कि 2025 का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन देश के लोकतंत्र संस्थाओं को सशक्त करेगा। देश के विभिन्न विधायी निकायों, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शामिल है। सम्मेलन का विषय है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्य सुदृढ़ करने में संसद और राज्य विधानसभाओं का योगदान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। 70 सीटों की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सबसे अधिक 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों से हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार 1522 नामांकन पत्रों में से 477 रद्द कर दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 हफ्ते शेष रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कई मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप की दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और संसद हमले के मामले में अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक ही पक्ष है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता की संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि पारदर्शिता की कमी को दर्शाती है। दूसरी ओर संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल शुक्ला ने दावा किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में जो भी काम हुआ है वो कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की देन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से दिल्ली पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में संबंध में 397 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने एक बयान में बताया है कि 15 करोड़ रुपए मूल्य के 212 गैर लाइसेंसी हथियार, करीब 36,000 लीटर शराब और 75 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युवा देश की संपत्ति है जो राष्ट्र निर्माण और समृद्धि में योगदान देते हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय कैडर कोर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत की संस्कृति 140 करोड़ लोगों की एकता से बंधी हुई है और प्रत्येक व्यक्ति का विकास समाज की प्रगति को दर्शाता है। भारत के संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज डाक टिकट संग्रहालय का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय संविधान देश को प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए हमारा मार्गदर्शक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर कड़े कदम उठाए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की तैनाती और जागरूकता अभियानों के माध्यम से प्राधिकरण महाकुंभ मेले के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सबसे आगे है। और महिला हॉकी इंडियन लीग में आज रांची में जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब का मुकाबला दिल्ली एसजी पाइपर्स से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। पुरुष वर्ग में रांची रार बंगाल टाइगर्स का सामना राहुल केला के जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब से होगा। यह मैच रात 8:15 बजे शुरू होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।